जो भी महिमा सुनाए कहाँ से सीखा? जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, जैसे मैं जानना चाहूंगा फर्स्ट टाइमर कौन भाई बहन आए हैं? अच्छा, बहुत भाई बहन आए हैं। मैं माउंट आबू में फर्स्ट टाइम आया था 1986 में, तब ये ज्ञान सरोवर परिसर नहीं था, ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं था, शांतिवन नहीं था, कुछ नहीं था, खाली पांडव भवन छोटा सा था। और उन दिनों में तो हमारी दादियां थी, आप तो बहुत कुछ अभी मिस कर रहे हैं, फिर भी बाबा आज भी मुरली में कहते हैं कि जो लास्ट भी आया है इस पढ़ाई में वो फर्स्ट हो सकता है। दुनिया में किसी भी स्कूल कॉलेज में आप एकदम लेट एडमिशन लो, एग्जाम नजदीक आ गया, सवाल ही नहीं उठता है कोई पास करेगा, परंतु इधर बाबा कहते तुम भले लेट आए हो लेकिन एकदम फर्स्ट हो सकते हो। तो जो फर्स्ट टाइमर है मैं आपको बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं। अभी क्या करना है सुनिए। जब मैं आया था फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लगा अरे बाप रे, 50 साल हो गया भगवान आके पढ़ा रहे हैं और मैं इतना लेट आया इस यूनिवर्सिटी में, अरे मैं तो बहुत लेट हो गया, मैं क्या करूं अभी। तो मैं हमारे पुराने वरिष्ठ दादा सब थे, विश्वरतन दादा, जगदीश भाई जी, हमारी दादियां, पूछा मैं क्या करूं अभी इतना लेट आया क्या करूं। तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं? जैसे कोई स्कूल कॉलेज में लेट एडमिशन लेता है, अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और कहीं का, तो क्या होगा? फेल ही हो जाएगा। तो लेट अगर आया है तो टोटली फोकस्ड एकदम, अभी पढ़ाई किसी बार कहीं बुद्धि नहीं, तो ये पास हो सकता है। तो उन्होंने भी, सभी दादियों ने, दादा ने, सभी ने ऐसा कहा कि देखो अभी आप लेट आए हो और कहीं मन बुद्धि नहीं, मेरा तो एक शिवावा दूसरा न, इस पढ़ाई में लग जाओ, फिर देखो फिर आप बहुतों से आगे निकल जाओगे। तो आप भी लेट आए हो, अभी तो लेट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा टू लेट हो गया है, अभी बहुत लेट हो गया है। अभी अगर इधर उधर बुद्धि भटकाएंगे, कई ऐसे करते हैं ना कि यहां आए फिर थोड़े दिन के बाद जाएंगे कि वो फलाने सत्संग वहां भी अच्छा होता है, वहां भी थोड़ा सुनते हैं, फलाना गुरु महाराज वो भी सुनाते हैं, अच्छा वो भी सुनते हैं। आजकल तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, मोबाइल में सब आ जाता है। तो कहीं भी नहीं, देखो सारे कल्प में, सारे सभी युग में हम मनुष्य से सुने, मनुष्य से बात किए, मनुष्य से सीखे, लेकिन एक ही समय सारे कल्प में एक बार परमात्मा शिव लेते हैं अवतार। तो अभी एक वक्त, एक ही बार ही परमात्मा से सुनने का, सीखने का मौका मिला है। क्यों मनुष्य से बुद्धि भटकाए? मनुष्य से सुन सुनकर तो ये दुर्गति हुई। अभी मनमत, परमत, लोकमत, शास्त्रमत, गुरुमत, ये सबको रावण की मत कहेंगे, ये सबको छोड़कर एक श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, परमात्मा की मत पर चलना है। बाबा अभी हमें क्या कहते हैं तो ही हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। मेरा एक सवाल है, आप सभी यहां क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? कर्मातीत बनने, बाप समान बनने, और भी कुछ? योग भट्टी में आए हैं, और कुछ? उत्तर सब राइट बताए, बहुत अच्छा, और कुछ? क्या लक्ष्य लेके आए हैं जी? शक्ति भरने? अच्छा, सभी अपने जो जवाब दिया सब राइट है। दुनिया में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस है, वहां क्या पढ़ाया जाता है और यहां क्या पढ़ाया जाता है? वहां जिस्मानी पढ़ाई, यहां रूहानी पढ़ाई। सुनिए, भारत एक बहुत प्राचीन देश है, भक्ति प्रधान देश है। भारतवर्ष में जितने मंदिर हैं शायद दुनिया में और कोई ऐसे देश होगा जितने इतने मंदिर होंगे। और मंदिरों में हम देखते हैं देवी देवताओं की प्रतिमा है, भगत सभी एकदम प्रातः जागरण करके जाते हैं, पूजन वंदन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भोग अर्पण करते हैं और बहुत प्रसन्न होकर घर लौटते हैं सवेरे सवेरे। अगर मूर्ति देखा जाए तो जो देवी देवताओं की प्रतिमा है उससे समझ आता है कि देवी देवताएं भी हमारे जैसे ही इंसान है, उनके भी आंखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है, हमारे जैसे ही इंसान है, लेकिन उनकी मूर्ति बनाकर क्यों पूजा करते हैं? कभी सोचा आप सभी ने, उनको ऐसा बनाने वाला कौन है? क्यों उनकी जड़ मूर्ति आज हजारों साल के बाद भी लोग उनकी प्रतिमा बनाकर इतनी पूजा, इतने भावना से, श्रद्धा से जागरण करते हैं, उपवास करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, क्यों ऐसा? नेचुरली उनका जीवन इतना श्रेष्ठ होगा तभी तो, है तो हमारे जैसा मनुष्य, लेकिन उनका जीवन कितना श्रेष्ठ होगा जिसके कारण लोग उनकी पूजा करते हैं। किसने बनाया उनको ऐसा? किसी को पता नहीं। वास्तव में जितनी भी देवताएं हैं, वो देवताओं का ईश्वर कौन है? देवेश्वर, देव देव महादेव, देवेश्वर कौन है? परमात्मा शिव। राम का भी ईश्वर रामेश्वर, कृष्ण का भी ईश्वर गोपेश्वर, ब्रह्मा का भी ईश्वर ब्रह्मेश्वर, विष्णु जी के भी ईश्वर विश्वम्भरेश्वर, शंकर जी के ईश्वर शंकरेश्वर, त्रयंबकेश्वर, नारीश्वर, बालेश्वर, देवासुरेश्वर, बुढ़ेश्वर, योगीश्वर, सभी का ईश्वर सर्वेश्वर। तो सर्वेश्वर देवेश्वर परमात्मा शिव, कल्पांत में कलयुग अंत हो रहा है, सत्ययुग आ रहा है, संगम युग में आकर हम सभी को जो शिक्षा देते हैं उससे साधारण मनुष्य ऐसे बने, देवी देवता बने। तो परमात्मा संसार में जब आते हैं वो आध्यात्म शिक्षा देते हैं। एक होता है स्पिरिचुअलिज्म, एक होता है मेटेरियलिज्म, एक है आध्यात्मिकता आध्यात्मवाद, दूसरा है भौतिकवाद वस्तुवाद। तो संसार ये भौतिक जगत, भौतिक दुनिया, यहां पांच तत्व का बना हुआ सब कुछ है। आज जो हम साइंस पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान कहा जाता है उसको, फिजिकल साइंस। तो संसार में जितना भी ज्ञान है वो फिजिकल ज्ञान है, परंतु बाबा हमें मेटाफिजिकल अभौतिक ज्ञान देते हैं जिसको आध्यात्मिक कहा जाता है। आध्यात्म जिसमें आत्मा का उन्नति हो, प्रगति हो, कल्याण हो। क्योंकि संसार नहीं जानती है कि हम एक एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। दुनिया वाले जो आंखों से दिखता है उसको मानते हैं, जो दिखता नहीं है बिलीव नहीं करते। साइंटिस्ट क्यों नहीं मानते हैं आत्मा को? क्योंकि ना आत्मा को पकड़ सकते हैं ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो चीज को पकड़ के एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको मानते हैं। लेकिन आध्यात्म तो डील्स विथ मेटाफिजिकल थिंग्स, जो चीजों को इन आंखों से देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ऐसी चीजों का ज्ञान है जो परमात्मा कर देते हैं। तो स्पिरिचुअल नॉलेज व अध्यात्म विज्ञान अभौतिक है, ये दुनिया में किसी के पास ये ज्ञान नहीं है। भगवान हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। यहां आप आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने आए हैं। क्यों चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान? क्योंकि वस्तुवाद, भौतिकवाद, मेटेरियलिज्म हमको देह अभिमानी बनाता है। हम देह नहीं है, देह तो गाड़ी है। हम सभी सुने हैं, अभी जानते हैं अच्छी तरह से, शरीर एक गाड़ी है। शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा है। एक ड्राइवर कहे मैं एक ट्रक हूं, मैं एक जीप हूं, मैं एक कार हूं, क्या कहेंगे? तो हम अपने आप को भूल गए थे, अपने को क्या समझते थे? देह समझते थे। और जब देह समझते हैं, देह समझने से सारे विकार पैदा हो जाते हैं। देह की सुंदरता देखते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, काम विकार जागृत होता है। सोचते हैं ये मेरे से छोटा है, कम पढ़ा लिखा है, मेरे साथ आर्गुमेंट करता है, गुस्सा आता है। ये मेरी बात मानता नहीं है, गुस्सा आता है। फिर ये मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, लोभ पैदा हो जाता है, मोह हो जाता है। मैं इतना सेठ अमीर हूं, इतना पैसा का मालिक हूं, अहंकार आ जाता है। तो देह अभिमान सभी प्रकार के विकारों का जड़ है, जिसके कारण आज मनुष्य दुखी है। बाबा हमें देह अभिमान से परे ले जाते हैं। देह अभिमान से परे हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। तो अध्यात्म हमको आत्म अभिमानी बनाता है और भौतिकवाद हमें देह अभिमानी बनाता है, जिसके कारण आज भले विज्ञान के सब प्रकार का साधन है लेकिन मनुष्य कैसे हैं? घर घर में अशांति, दुख है। तो जब तक आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में नहीं आता है, हमारे जीवन में सदा के लिए सुख शांति खुशी आनंद प्रेम ये सब हो ही नहीं सकता है। ये संसार में स्वर्ग बनाने के लिए बाबा आए हैं, हमको आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देने के लिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, अध्यात्म कब आएगी? क्या प्रैक्टिस करने से अध्यात्म आ सकता है जीवन में? क्या बताएं? सोल कॉन्शस, ठीक है। एक जीवन में गुण चाहिए, वो गुण जब तक जीवन में धारण नहीं करेंगे हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आ सकती है। ऐसे बाबा हमें, बाबा सर्वगुणों का सागर है और हमें सभी गुण हमारे जीवन में धारण कराते हैं। वास्तव में आत्मा के जो सातों गुण है, वो सातों गुण जब हमारे जीवन में 100% आ जाती है, हम सत्वगुणी हो जाते हैं। अब जब सत्वगुणी हो जाते हैं हम देवता कहलाते हैं। वो सातों गुणों में क्या क्या है सभी को याद होगा? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। तो देखो ये सात गुण आप सभी ने बता दिया। इसमें पहला बताया ज्ञान, तो ज्ञान भी एक गुण है। और लास्ट में क्या बताया? तो शक्ति भी एक गुण है। तो ज्ञान भी एक गुण है, शक्ति भी एक गुण है। तो बाबा गुणों का सागर है, हमें सभी प्रकार का गुण हमारे जीवन में धारण कराते हैं। गुण दो प्रकार के हैं, एक है आदि गुण, एक दूसरा है अनादि गुण। जो आप सात गुण बताए ये है अनादि गुण, आत्मा के अपने निजी गुण है सात। लेकिन जब हम संसार में आते हैं पहली बार स्वर्ग में एकदम आदि काल में, उस समय हमारे अंदर जो गुण होते हैं उसको दैवी गुण व आदि गुण कहा जाता है। वो कम से कम 36 है। तो बाबा हमें सर्वगुण संपन्न बना देते हैं, इसलिए तो देवताओं की इतनी महिमा होती है, पूजा होती है। आज के मनुष्य कैसे देखो, अवगुणों की खान है सबके अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, घृणा, आलस्य, भय, बैर, विरोध, क्या क्या नहीं है, सब प्रकार के रावण के सब गुण भरे पड़े हैं, जिसके कारण हम दुखी हो गए। बाबा हमें आए हैं हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास कराने, सद्गुणों की धारणा कराने। तो एक गुण है, ऐसे तो जैसे विकारों का आपस में बड़ा संबंध है, एक विकार आता है तो दूसरों को ले आता है, तो गुणों का भी आपस में संबंध है। एक गुण जीवन में आ जाता है दूसरे गुण भी आ जाते हैं। तो एक मुख्य गुण है जिस गुण को धारण करने से ही हम जीवन में हमारे आध्यात्मिकता आ सकती है, वो गुण है सिंप्लिसिटी। सिंपल बनो, बाबा कहते सिंपल बनो, सिंपल बनो। क्या मतलब है सिंप्लिसिटी? क्या अर्थ है सिंप्लिसिटी? माने क्या सिंप्लिसिटी? माने सादगी, सादगी। सादगी माने क्या? हमारे सोच विचार, हमारे वेशभूषा, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे चाल चलन, ये सब स्वभाव संस्कार साधारण होना चाहिए, सादा सीधा होना चाहिए, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। बाबा हमें बीच का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, जेवर पहनेंगे तो आपको देह अभिमान आएगा, अहंकार आएगा, तो आप कैसे जीवन में फिर आध्यात्मिकता आएगी? देह अभिमान को छुड़ाने तो बाबा आए हैं ना, इसलिए कहते हैं बच्चे तुम्हारा खान पान, रहन सहन मीडियम होना चाहिए। बहुत एकदम एरिस्टोक्रेट, एकदम बिल्कुल रॉयल जैसा, ऐसा भी नहीं कि एकदम एकदम सिंपल भी नहीं, बिल्कुल एकदम भिखारी जैसा भी ना हो। जीने के लिए तो हमें पहनना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लेकिन एकदम बिल्कुल नीचे भी नहीं, एकदम ऊंच भी नहीं, बीच का बाबा हमें सिखाते हैं। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा इसका आदर्श थे। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी अगर पढ़ेंगे तो ब्रह्मा बाबा आदर्श। तो सादगी एक महान गुण है, जिसके जीवन में सादगी है वास्तव में एक महानता है। और सिंप्लिसिटी या सादगी हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाती है। अगर हम टू मच एकदम बिल्कुल रॉयल, बहुत एकदम बनठन के बहुत अच्छा, उसमें फिर देह अभिमान आएगा, अहंकार आएगा, फिर उस तरफ चले जाएंगे, मेटेरियलिज्म जीवन में आ जाएगी, भौतिकवाद की तरफ चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सिंपल बनो। इस पढ़ाई में आप देखना हमारी सभी बहनों को, यहां जो ड्रेस है हमारा कोड, ड्रेस कोड कैसा है? सफेद। क्यों सफेद बाबा ने कहा, क्यों दूसरा कलर नहीं कहा? सफेद की बहुत सारी विशेषता है। सफेद रॉयल्टी की निशानी है। आप जो सफेद पहनता है इधर उधर कभी भी नहीं बैठ सकता है। अगर आप काला पहने हो कहीं भी बैठ जाएंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, थोड़ा 10 दिन पहनने के बाद भी चलता है और 2 दिन पहन लूंगा कहेंगे, लेकिन सफेद पहनेंगे तो 2 दिन भी पहनना मुश्किल होगा। तो व्हाइट रॉयल्टी की निशानी, व्हाइट प्यूरिटी की निशानी है। व्हाइट जब कोई पति मर जाने के बाद जो स्त्री है वो क्या पहनती है, क्यों व्हाइट पहनती है? वो उनके संसार के प्रति वैराग्य आ जाता है। क्या रखा है, अभी तो पति चले गए और क्या करना है मुझे, क्या और दिखाना है, तो सिंप्लिसिटी, एकदम सादा जीवन जीने के लिए एक प्रकार का त्याग का वो निशानी है। जब कोई मर जाता है तो क्या ढकते हैं, किस प्रकार का कपड़ा ढकते हैं उसको, तो वैराग्य की निशानी, त्याग की निशानी। और अगर आप व्हाइट पहनते हैं, आपके पास कितने जोड़ी चाहिए कपड़े, 8-10 जोड़ी कपड़े हो गए तो हो गया, कितने चाहिए? और अगर आप ज्यादा रखेंगे तो देखना वो कब आपका वार्डरोब में ऐसे ही पड़ा रहेगा, लटका रहेगा सालों तक, कभी एक बार यूज करते होंगे कि नहीं पता नहीं। जीवन में कितना चाहिए, 8-10 जोड़ी चाहिए, उससे और क्या चाहिए? लेकिन आप अगर कलर पहनते हैं, आपके पास 100 जोड़ी भी होगा ना, अगर कोई दूसरे कलर बहुत अट्रैक्टिव कोई चेक कोई कलर पहन के आएगा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा भी मेरे पास भी होना चाहिए, इच्छा होगी, तृष्णा होगी। लेकिन आप अगर व्हाइट पहनते हो, मार्केट में खरीदने गए कपड़े की कुछ भी, अब देखना जो लोग कलर पहनते हैं वो क्या करेंगे, ओ पिंक वाला लाओ तो पिंक वाला, नहीं 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 नहीं, ओ ब्राउन वाला लाओ, ओ चेक वाला, देखना वो खरीदने के लिए उनको घंटों लगेगा। और सफेद खरीदते हैं तो कोई भी ले लो सफेद, चलो चलो। तो त्याग की निशानी, वैराग्य की निशानी, आपको बहुत एकदम टू मच इकट्ठा करने का इच्छा नहीं होगी। प्यूरिटी की निशानी, रॉयल्टी की निशानी। तो बाबा हमें सफेद, सभी रंगों को मिला दो देखना सफेद हो जाता है। और जब क्रिकेट खेलते हैं धूप में देखना वो लोग क्या पहनते हैं, व्हाइट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो फरिश्ते होते हैं कैसे दिखाते हैं, सफेद सफेद दिखाते हैं, और जो भूत होते हैं कैसे दिखाते हैं, काला काला दिखाते हैं। तो फरिश्तों की निशानी। तो बाबा हमें इसलिए सफेद पहनाना सिखाए। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं, बहुत साल पुरानी बात है। बॉम्बे में हमारी बहनें एक अभिनेत्री, बहुत नामी ग्रामी अभिनेत्री को निमंत्रण देते थे कि आप आओ हमारे कॉम्प्लेक्स देखो, आओ आओ। बहुत बार उनको रिक्वेस्ट करने के बाद वो लास्ट में एग्री हुई और आई। आने के बाद उनका अनुभव हमारे ज्ञानामृत जो मंथली मैगजीन निकलता है ना उसमें छपा था, मैं पढ़ा था इसलिए बता रहा हूं। तो बताया कि मैं, मुझे जब अबू आना कन्फर्म हो गया, मैं 3 महीना पहले से तैयारी करने लगी कि वहां क्या ड्रेस पहन के जाऊं, कैसा जेवर पहनूं, क्या कैसे मेकअप करके जाऊं। तो कितने जगह जाके बहुत प्रकार के ड्रेस सिलेक्ट करके आई और यहां आई तो एकदम ब्लैक कलर का पहन के आई थी, डार्क कलर का। आते ही आप नीचे अगर हमारा डायमंड जुबली हॉल देखेंगे जहां 20-25 हजार बैठने का ये है, तो बोले कि पूरा एकदम जैसे कि कोई एकदम पूरा क्लीन व्हाइट सभी का ड्रेस, जैसे टीनोपाल का कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यहां सबको सैंपल रखा है। और सभी का ड्रेस तो छोड़ दो, और डायमंड हॉल में जितने चेयर्स लगे हुए हैं पड़े हैं वो चेयर्स भी व्हाइट। मुझे ऐसा लगा ये हंस मंडली में मैं कहां एक कौवा इधर पहुंच गई। हालांकि बहुत कॉस्टली कपड़े पहन के आई, लेकिन इनको इतना ऑड लगा बोले कि मैं दूसरे दिन तुरंत ही जाके चेंज कर दी उसको। कहने का मतलब बाबा हमें जो सिंपल जीना सिखाए हैं, आप पहले अगर पांडव भवन देखते वेरी सिंपल, एकदम सिंपल, बाबा का कमरा बिल्कुल सिंपल। अभी जो बाबा का कमरा है दो गुना हो गया है, बाबा का कमरा बहुत छोटा था। और अभी भी आप जाके देख सकते हो बाबा का जो खटिया है, आप बेडशीट उठा के देख लेना, जो गांव में जो ऐसे कपड़े का जो पट्टा टाइप का होता है ना, ऐसे खटिया में बंद एक ऐसा ही खटिया है गांव में जैसे यूज करते। बाबा का जीवन बिल्कुल सिंपल, बाबा सारा जीवन काल में धोती कुर्ता ही पहने। और हमारे विश्वरतन दादा कहते थे कि बाबा ने अपना कलर भी निकाल दिया, कलर अहंकार की दिशा नहीं, कलर भी निकाल दिया। बाबा इतना सिंपल थे। और वो जो झोपड़ी आप देखते हैं अभी पांडव भवन में जाएंगे ना, वो तो खजूर का पत्ते का था, उसका दीवार भी और ऊपर रूफ भी। तो बाबा का जीवन एकदम सिंपल सादा था, बिल्कुल सादगी। बाबा कहते बिल्कुल एकदम भव्य बनाने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल। तो जीवन में अगर हमारी सिंप्लिसिटी होगी तो बहुत सहज जीवन अनुभव करेंगे। नहीं तो मन बुद्धि ये सब तृष्णाएं हैं, आपकी तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होगी, बुद्धि इधर उधर भटकती है। तो और जो सिंपल सादा जीवन जीवन यापन करता है ये महानता की निशानी है, लेकिन वो सर्व के लिए आदर्श माना जाता है, सभी उनको बहुत ऊंच नजर से देखते हैं। तो जीवन में प्रभु पसंद बनना है तो बाबा कहते सिंपल बनो। हमारे वेशभूषा से लेकर खान पान से लेकर देखिए, आजकल बाबा कहते हैं लोग क्या क्या खाते हैं देखना, फिर सब प्रकार की बीमारियां। बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको कह सकता हूं, दो मिनट आप बाबा को याद करें फिर बताता हूं। तो बाबा हमें बहुत सुंदर सिंपल जीवन जीना सिखाते हैं। जीवन में अगर सादगी है तो ही जीवन में ये आध्यात्मिक शिक्षा को अनुकरण कर सकेंगे, नहीं तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। सादगी हमें कम खर्च वाला नसीन बनाता है। जिसका जीवन सिंपल है थोड़े चीजों में थोड़े से में संतुष्ट हो जाता है। जैसे बताया ड्रेस, अगर आप सफेद पहनते हो कितने जोड़ी चाहिए, अगर कलर पहनते तो बहुत सारी बुद्धि भटकेगी। इसी प्रकार अगर सादा जीवन है तो बहुत कम खर्च में भी हमारा सब काम चल जाएगा। बाबा हमें सिखाते हैं कम खर्च वाला नसीन हो। आज दुनिया में आप देखना, एक व्यक्ति महीने में 5,000 कमाता होगा तो भी वो परिवार का भरण पोषण कर लेता है, और कोई 5,00,000 कमाने के बाद भी उसको कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो 5,000 कमाएगा उसी अनुसार उसका परिवार को मेंटेन करेगा, लेकिन जिनके पास पैसा ज्यादा होता है फिर होटलों में खाएंगे, जो अनावश्यक चीजें खरीदेंगे, बुद्धि और कहीं कहीं भटकेगी। जब और बुद्धि जितने दुनिया में भटकेगी नेचुरली ईश्वर से दूर हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं सिंपल जीवन जियो। यहां जो खाना मिलता है अच्छा लगता है सभी को? ब्रह्मा भोजन अच्छा लगता है? ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन। दुनिया में कितना क्या क्या सारा गंध चीजें खाते रहते हैं लोग, इसलिए फिर कैसे बीमारियां कितनी। देखो बाबा हमें, देखो कितना सुंदर जो देवताई जीवन होगा हमारे भविष्य में। देवताएं कभी बीमार होते हैं? बिल्कुल निरोगी काया कंचन काया हमने सुना है। तो बाबा अभी से हमको ऐसा सुंदर जीवन जीना सिखा रहे हैं। कोई मंदिर में वहां जाके प्याज लहसुन या कोई नॉनवेज कोई जाके अर्पण करता है, देवताओं को फल फूल चढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखिए दूध दही के आइटम सब जाके भोग चढ़ाते हैं, तो उनके जीवन भी इतना सादा होगा ना। हमारे देश में तो कोई प्याज लहसुन खाते ही नहीं थे, वास्तव में विदेशी आके हमें चाय पिलाना सिखाए, ये सब गंद चीजें खिलाना सिखाए। हम अपने धर्म कर्म को भूल गए, अंधानुकरण करने लगे दूसरों को। भारत में कल्चर था ही नहीं, आज तक भी मंदिरों में हम गंद चीजें कहां देते हैं। तो जीवन में हमारा भोजन अगर सिंपल है, मैं तो कहूंगा 99% बीमारी से हम ठीक हो सकते हैं, 99% कह सकता हूं। सिंपल दाल सब्जी रोटी चावल खाओ, देखना कोई बीमारी होगी क्या? कुछ बीमारी नहीं होगी। हम जीव के स्वाद के पीछे क्या क्या खा जाते हैं
फिर बहुत प्रकार की बीमारियां होती। सिंपल भोजन हो, सादा भोजन। मैं हमारी दादियों को पूछता था कि बाबा क्या खाते थे। हमारी लच्छू दादी थी, बाबा को रोज खाना खिलाती थी, तो दादी कहती थी बाबा का भोजन बिल्कुल सिंपल। सारे जीवन काल में बाबा छोटी छोटी 3 चपाती से 4 चपाती कभी नहीं खाए होंगे। जो योगी होते हैं स्वल्पाहारी होते हैं, ज्यादा खाने से फिर सुस्ती आएगी, मोटे हो जाएंगे। आजकल पहले जमाने में फिर भी बहुत सारा हार्ड वर्क करते थे लोग, आजकल तो सबके पास विज्ञान के साधन है, बटन दबाओ सब हो जाता है। फिर ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, आलस्य आएगा, मोटे हो जाएंगे, सब बीमारियां। और आपको पता है आपका वेट खाली 10 किलो एक्स्ट्रा बढ़ गया, हजार बीमारियां आएगी। आपका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, थायराइड की बीमारी आएगी, कुछ नहीं होगा तो घुटना घिस जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाएगी, कमर दर्द हो जाएगा, पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगी, कितने कितने क्या क्या बीमारियां हो जाती। और 10 किलो वजन बढ़ जाने से क्या होता जानते हैं, आपके हार्ट को 1000 लीटर खून एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है एक दिन में, 1000 लीटर। तो हार्ट बेचारा क्या होगा सोचो। तो हम ज्यादा खाते हैं इसलिए फिर मोटे हो जाते हैं। योगी माना स्वल्पाहारी, कम खाएं, देखो आपको एकदम एक्टिव रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, चुस्त फुर्त रहेंगे, बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा। बाबा यहां जो हमें खान पान खिलाते हैं, हम अगर संयमित रूप से खाएंगे हमें कोई बीमारी नहीं होगी। पिछले 31 ईयर हो गया यहां मुझे मधुबन में रहते, 31 साल हो गया, 31 साल में मेरा वेट शायद 1 किलो भी नहीं बढ़ा होगा। और मैं हर साल चेक कराता हूं, ना तो कोई कोलेस्ट्रॉल है ना तो कोई कुछ है। तो बाबा का ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन, सारे कल्प में देवताएं भी तरसते हैं, ब्रह्मा भोजन और किसी को नहीं मिलेगा। बाबा हमें कितना सुंदर देखिए जीवन जीने के लिए कितना सुंदर कला सिखाते हैं, दिन में 4 बार खाओ। आप मधुबन में हमारे जाओ, ज्ञान सरोवर जाओ, 4 बार मिलता है, सवेरे नाश्ता मुरली के बाद 8 बजे तैयार, लंच 12-1 बजे तैयार, शाम को 4-5 बजे हल्का सा कुछ थोड़ा सा टोली मुरमुरा की कोई पॉपकॉर्न की कुछ थोड़ा, और रात को 8 बजे डिनर। कोई कम 4 बार खाए, कभी भी जो 2 बार खाते हैं वही लोग मोटे होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक भूखा रहा, जब खाने बैठेंगे भूख लगेगी, एकदम खा लेंगे इतना तो फिर वेट बढ़ेगा। कम खाएं, 4 बार खाएं। तो बाबा ब्रह्मा बाबा सुखी चपाती थी, छोटी छोटी 3 से 4 कभी नहीं खाए, दाल खाते थे, सब्जी खाते थे, सिंपल भोजन था बाबा का। हाँ, कोई मेहमान आते थे, बाबा के बच्चे दूर दूर से कोई आते थे, तो बाबा उनको खातरी करने के लिए स्पेशल कुछ बनवाते थे, लेकिन बाबा सब टेस्ट करते थे, बाकी सबको खिलाते थे। हमारी भारतीय संस्कृति है, कल्चर है, हमारे घर में भले दाल चावल रोटी खाते हैं हम, लेकिन कोई मेहमान आते हैं तो उसके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा बनाते हैं ना, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है, तो बाबा ऐसे कराते थे। तो इसलिए हमारा भोजन सिंपल हो, तेल ज्यादा नहीं, नमक ज्यादा नहीं, किसी भी कोई भी चीज, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ए पॉइजन, कोई भी चीज अति मात्रा में है तो जहर हो जाएगा। पानी भी ज्यादा पी लो देखना उल्टी हो जाएगी, नमक भी ज्यादा खा लो उल्टी हो जाएगी, तो कोई भी चीज अति मात्रा। आज हमारे भारत में सभी माताएं 4-4 गुना तेल, 4-4 गुना नमक ज्यादा एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। WHO से एक टीम आए थे, सर्वे करके देखे कि भारत में 4 गुना तेल और 4 गुना नमक एक्स्ट्रा खा रहे हैं, इसलिए 50% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, डायबिटीज तो घर घर में आप देख रहे हो क्या हालत है। तो इसलिए सिंपल भोजन देखो, सादा भोजन खा के देखो, देखना कितना आनंद है, कितना मजा है। इस प्रकार हमारा वेशभूषा भी, बाबा कहते देखो कितना स्टाइल करते हैं लोग, फिर लोग चोरी होता है, कोई लूट मार होता है, कोई जेवर कान टूट जाता है लोगों, कितना समाचार आप सुनते हो, क्यों ऐसा, हम सिंपल जीवन जी। तो बाबा कहते सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन हो लेकिन विचार ऊंच हो। लेकिन पूछो किसी को भी सिंपल जीवन क्या है तो लोग बता सकते हैं ठीक है, लेकिन ऊंच विचार किसे कहा जाता है पूछो तो किसी को भी पता नहीं ऊंच विचार क्या होता है। आप स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होना चाहिए। हमारा स्पिरिचुअलिटी का एम ही यह है, एसेंस ही है, और यही सुख शांतिमय जीवन का आधार है। लेकिन हाई थिंकिंग किसे कहा जाता है किसी को पता नहीं, ऊंच विचार किसे कहा जाता है पूछिए, किसी को पता नहीं, दुनिया में किसी को पता नहीं, बाबा के बच्चों को पता है। बाबा हमें जो नित्य मुरली सुनाते हैं इसमें सारे हाई थिंकिंग क्या है, इसमें सब कुछ है। वास्तव में बाबा जो सम्मान देते हैं हमें, तुम कौन हो, आज तक हम क्या समझ के रखे थे, मंदिर में जाते थे, मंदिर में क्या गाते थे, बहुत महिमा करते थे देवी देवताओं की, भगवान की, और खुद को क्या समझते थे, नीच पापी कपटी। तो इसको ऊंच विचार कहेंगे नहीं। बाबा ने हमें सम्मान दिया, सम्मान ऊंच विचार है। सम्मान किसे कहा जाता है, जैसे मेरे बाप ऐसा मैं। एक राजा का बेटा अपने को क्या समझता है, मैं भी राजकुमार हूं। एक करोड़पति का बेटा क्या समझता है, मैं भी अधिकारी हूं। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मैं सर्वशक्तिवान हूं, प्यार का सागर हूं, तो तुम कैसा होना चाहिए, तुम भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम उनका विश्वास कमजोर। कोई बाप करोड़पति है और बेटा कहे पापा जी मुझे एक रुपया दो ना, तो उसका बेटा बाप क्या कहेगा, कैसा नालायक है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के हम प्यासी हैं। ये ऊंच विचार कहेंगे नहीं। बाबा कहते मेरे बच्चे जैसा मैं ऐसा तुम, जो गुण मेरे अंदर है तुम्हारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए। तो बाबा ने हमें सम्मान दिलाया, तुम कौन हो, उसी स्मृति में रहना, स्वयं को सम्मान देना, वो है सम्मान। और बाबा जो कहते हैं तुम कौन हो ऐसा मान लेना, उसको कहते सम्मान। भगवान का मानना, उसको कहते सम्मान। भगवान जो कहते हैं उसको मानना, स्वीकार करना। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तुम महान आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो, पूज्य आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, देवात्मा हो, सारे विश्व के तुम पूर्वज हो। तो हम कितने महान हैं बाबा हमें सुनाते हैं, उसको स्वीकार कर लेना, उसको सम्मान कहते हैं, उसको ऊंच विचार कहते हैं। और उसी श्रेष्ठ विचार से स्वयं रमण करते हुए दूसरों को भी इतने सुंदर दृष्टि से देखना, सबके प्रति भी सुभावना शुभकामना रखना, उसको कहते हैं ऊंच विचार। सबके प्रति कोई भी हो कैसा भी हो, सबके प्रति हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए, सुभावना शुभकामना रखना, सबके लिए कल्याण की भावना है। जैसे बाबा रहम दिल है, मर्सीफुल है, कोई भी हो, बाबा भोलानाथ है, वरद है, सबको वरदान देते हैं। चाहे रावण आए तो भी तथास्तु, चाहे राम आए तो भी तथास्तु। इसलिए कहते हैं देवासुरेश्वर, देवताओं का भी ईश्वर, असुरों का भी ईश्वर। जो जो कामना लेके जाए भगवान के सामने, शिव बाबा के सामने, तथास्तु। सबके प्रति सुभावना शुभकामना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, मंगल हो। तो जैसे बाबा ऐसे हम, इस प्रकार की भावना रखना, उसको कहते हैं ऊंच विचार। तो अगर हमारा जीवन सिंपल हो, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हो, ऊंच हो, तो क्या बन जाएंगे हम, सैंपल बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जो सिंपल है वो सैंपल है। सैंपल क्या है, सैंपल माना, सिंपल माना। आप देखना कभी कभी कहीं शोरूम में जाते हैं तो कुछ उसमें डिस्प्ले किया जाता है, आप देखते हो कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये चीज है, ये चीज मुझे चाहिए, जाके फिर दुकान में कहते हो कि ये जो उधर लटका हुआ है ना वो मुझे चाहिए। तो जो शोपीस के रूप में रखा जाता है उसको सैंपल कहा जाता है। सैंपल को देख के ही लोग खरीदते हैं, अच्छा ये सैंपल इतना अच्छा है तो फिर। और हमें जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना, हम फिजिशियन सैंपल देते हैं, दवाई का भी फिजिशियन सैंपल देते हैं, थोड़ी सी दवाई देते हैं, डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी दवाई है, इसके लिए अच्छा काम करता है, उसको यूज करके देखना। तो हम फिर कोई तकलीफ आता है उसको देते हैं, काम करता है कि नहीं देखते हैं, काम करता है तो कहते हैं हाँ ठीक है, फिर हम लिखते हैं, उसको सैंपल कहते हैं। तो सैंपल माना सबके सामने एक प्रकार का उदाहरण है, शोरूम में सैंपल रहते हैं। तो बाबा हमें ये मधुबन क्या है, बाबा कहते हैं ये विश्व के सामने सो केस है, और आप बच्चे मेरे सो केस के सो पीस हो, आप सिंपल हो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक बहुत पुरानी बहन है, उस सुना रही थी अनुभव, बोले कि मैं पहले तो आप तो बहुत सही समय पर आए हो, जो सभी ब्रह्मा कुमारियों को बहुत ऊंची नजर से देख रहे हैं, आप अभी देखना कहीं भी जाओ आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आप बेज पहने हुए हो तो चाहे एयरपोर्ट में जाओ कहीं भी जाओ सभी आपको बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, सम्मान नजर के देखते हैं। ये मेरा अनुभव है, मैं बहुत ट्रैवल करता था, कहीं भी जाओ आपको सहयोग मिलेगा, बड़ा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। लेकिन एक समय था जब मैं आया था, उन दिनों में 80s में बता रहा हूं, देखते ही लोग गाली देते थे, इतना गाली देते थे बात मत सुन नहीं सकते हो, कान बंद करना पड़ता था। लेकिन आप, हमारी दादियां कहते थे हम जाते थे सेवा करने के लिए तो लोग खिड़की दरवाजा बंद कर देते थे। तो वो समय तो गया, लेकिन अभी जो बाबा के पास जिस समय में आए हैं हम सभी, बाबा कहते हैं बच्चे तुम आदर्श हो, तुमको देख के दूसरे अनुकरण करें। तो मैं सुना रहा था, बहुत पुरानी बहन है एक, जब शुरू शुरू में बल्कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं बनूंगी, उनके मन में बहुत एकदम लोगों से सुनी सुनाई बातें कि ये जादू कर देते हैं, ऐसा होता है वो होता है, तो नेगेटिव बातें सब बुद्धि में थी, तो कहते मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी। लेकिन फर्स्ट टाइम मम्मा को देखी, जब मम्मा को देखी धक से आके समर्पण हो गए और पूरा बाबा की बन गई। कहते मामा की, मम्मा की जीवन, मम्मा के बोल चाल देखने के बाद बनना है तो मुझे ऐसा ही बनना है, एकदम आके समर्पित हो गई। बाबा वही चाहते हैं कि मेरे बच्चे तुम ऐसा बनो, तुम्हारे चाल चलन बोल व्यवहार आचरण ऐसा हो कि एक चुंबक की तरह आकर्षित करे सबको। इसको रूहानियत कहा जाता है। दुनिया में कितना भी भव्य कपड़ा कोई पहने, मेकअप करके आए, ड्रेस पहने, वो क्या है, वो जो पर्सनालिटी है जिस्मानी पर्सनालिटी है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी है रूहानी पर्सनालिटी, प्यूरिटी इज द बेस्ट पर्सनालिटी। आपका जीवन अगर पवित्र है, निर्मल है, तुम्हारी जैसी पर्सनालिटी किसी की हो ही नहीं सकती दुनिया में। हमारे मम्मा बाबा कभी भी अपने को मेकअप करना, कभी भी ये सब चीजें आजकल जैसे करते हैं, ये सब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन हमारी जगदीश भाई जी कहते थे कि मम्मा के पास, कि बाबा के पास जाके बैठो तो ऐसा पदम फूल जैसा खुशबू आता था, उनका जीवन पूरा पदम फूल जैसा फ्रेग्रेंट हो गया था। देवताओं के जीवन में क्या गायन करते हैं, देवताओं को क्या कहते हैं, नयन कमल, हस्त कमल, पद्म कमल, नाभि कमल, कमल फूल के साथ भेंट किया जाता है। तो मम्मा बाबा कोई प्रकार के आर्टिफिशियल श्रृंगार, आर्टिफिशियल कोई कुछ यूज नहीं करते, एकदम सिंपल जीवन था। लेकिन उनके पास बैठो तो ऐसे एकदम बहुत सुंदर, भीनी भीनी, बिल्कुल एकदम खुशबू, पदम फूल जैसा खुशबू अनुभव होता था। तो मम्मा बाबा हमारे आदर्श थे। तो बाबा कहते तुम भी ऐसा बनो, फॉलो फादर करो, तुम्हारा जीवन भी ऐसा सुंदर हो, सिंपल हो, सबके लिए अनुकरणीय हो, आदर्श हो, सिंपल बनो, सिंपल बनो, सिंपल बनो। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, स्लोगन में सुन रहे थे ना आज, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। खाली भाषण करना सेवा नहीं है। अंत में बाबा कहते किसी को सुनने के लिए टाइम ही नहीं होगा, धीरज ही नहीं होगा। बाबा कहते तुम्हारी पर्सनालिटी से आकर्षित होके आएंगे, कहेंगे हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमें थोड़ा दृष्टि दे दो, हमें वरदान दे दो। भारत में 33 करोड़ जो देवी देवताओं का गायन है, कौन है वो सब, कौन है, कोई भी नहीं बोल रहे नशे से, हम हैं, बोलो ना सभी, कौन है, फिर भी नशे से आवाज नहीं आ रहा है। जो कहते हैं हमारा ही यादगार है, हाथ उठा लंबा लंबा, दोनों हाथ, दोनों हाथ पूरा सीधा, पूरा सीधा ऊपर, बहुत अच्छा, बधाई हो, ताली बजाइए। आज तक भी भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। भगवान ये संसार में आके वो 33 करोड़ मनुष्यों को ऐसा बनाए थे, आदर्श बनाए थे, तब तो आज तक इतने मंदिरों में पूजन है। कौन है वो सब, विदेश में है, विदेश में है, हम ही तो है ना, बाबा के पास हम आए हैं, हमको ही बाबा ऐसा बना रहे हैं, हम ही बनेंगे। और हमको ही देखकर देखो, बाकी दुनिया में तो 800 करोड़ लोग हैं। अंत में देखना, बाबा कहते तुम्हारे एक एक के सामने लाखों का एकदम पूरा क्यू लगेगा। कहेंगे अच्छा आपने भगवान को पहचान लिया, भगवान को पा लिया, भगवान से आप सुन ले, भगवान से पढ़े। और हमको थोड़ा, आप तो दूर की बात है, बहुत आगे तो क्या होगा आप सभी देख लेना। अभी भी मैं कहता हूं अभी भी हमारे हॉस्पिटल में आते हैं डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर, मुझे कहते हैं, मैं जब कहता हूं कि मैं 86 से हूं और उन दिनों में तो बाबा आते थे तो हम पर्सनली जाके बाबा के सामने छोटे बच्चे जैसा बैठते थे, बाबा वरदानी दृष्टि देते थे, टोली मुंह में खिला देते थे, वरदान देते थे। तो कहते अच्छा हमारे सिर पर हाथ रख दो, डॉक्टर्स कहते भावना से अभी भी। तो आगे चल के क्या होगा सोच लीजिए। तो इसलिए आप सभी जो भी अभी आए हैं बहुत लकी है, जो पहले आए हैं पुराने हैं तो वो तो लकी है ही, लेकिन अभी भी जो आए हो बहुत लकी हो। तो अपने भाग्य को हमेशा याद रखना और उसी नशे में, उस खुशी में हमेशा झूमते रहना। लेकिन दुनिया में जो पढ़ाई है वो पढ़ाई सारी वास्तव में थ्योरिटिकल है, हमारी बाबा की पढ़ाई सारा प्रैक्टिकल है। यहां थ्योरी कुछ भी नहीं है, जो करेगा सो पाएगा। यहां कोई बैठ के आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिख के डिग्री लेने की बात नहीं है। हमारी डिग्री क्या है जानते हैं? इस पढ़ाई की डिग्री क्या है? सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, 8 डिग्री है 8 डिग्री। सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, इच्छा मात्रम अविद्या, संपूर्ण जीवन मुक्त देवी देवताएं, ये हमारी डिग्री है। ये सब यहां ही धारण करना है, यहां ही ऐसा बनना है। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं बाबा ऐसा देखना चाहते हैं, सारे गुण हमारे जीवन में आए, सारी शक्तियां हमारे जीवन में आए, सारी कलाएं हमारे जीवन में आए, सभी ईश्वरीय मर्यादाओं पर हम चलें और संपूर्ण निर्विकारी बने, जीवन मुक्त बने, डबल अहिंसक बने और एकदम जीवन मुक्त देवी देवता बने। यहां ही बनना, वहां सत्ययुग में तो खाली ड्रेस चेंज होगा, खाली शरीर चेंज हो जाएगा, बाकी बनना इधर है। तो हमारी पढ़ाई सारा प्रैक्टिकल है, यहां थ्योरी बैठ के लिखने की नहीं है कुछ भी। जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने कहा एक गुण भी तुम्हारे जीवन में कम हो गया ना, सत्ययुग का प्रारंभ नहीं आओगे। एक गुण भी कम हो गया तो बाबा ने कहा है 16 कला संपन्न नहीं बनेंगे। एक कला कम हो गया तो सत्ययुग में आधे में आओगे, 2 कला कम हो गया तो सीधा त्रेतायुग में आओगे। तो इसलिए यहां पढ़ाई बहुत, ये पढ़ाई बहुत गुह्य भी है, बहुत गोपनीय है, बहुत रमणीक भी है। ये पढ़ाई भी है तो लड़ाई भी है तो चढ़ाई भी है, इसमें सब कुछ है। तो इसलिए ये पढ़ाई बहुत, आप सभी यहां आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने आए हैं, स्पिरिचुअल साइंस पढ़ने आए हैं। दुनिया में बहुत प्रकार के विज्ञान पढ़ाते हैं, बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, बहुत सारे, वो पढ़ने नहीं आए हैं, आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ने के लिए आए हैं। और क्या बनने आए हैं? सिंपल बनने आए हैं, सैंपल बनने आए हैं। आपको देखकर दूसरों को संदेश मिले, बाबा ये चाहते हैं तुम्हारे जीवन से, तुमको बोलने की जरूरत है ये ऐसे कैसे बने। मैं आपको बताऊं, हम जब शुरू शुरू में आए थे हॉस्पिटल, फर्स्ट टाइम जब बना पांडव भवन के बाद हॉस्पिटल बना, हम थोड़े 25 भाई बहने थे, ज्ञान सरोवर भी बाद में बना, पहले हॉस्पिटल बना। तो इतनी भावना बाबा के लिए, जो भी हॉस्पिटल में आए सभी मिलजुल के इतनी सेवा करते रहे कि बात मत पूछो। तो बॉम्बे से एक ग्रुप आए थे, एक पेशेंट को आया था, उसका परिवार आए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम सभी मिलके इतनी सेवा किए तो वो भाई रह नहीं पाया, बोला कि आप सभी ऐसे कैसे बन गए। हमारे दिल्ली में कोई बात करता है तो हम जेब संभालते हैं, पहले हमारे जेब काटना दे, आप लोग ऐसे कैसे बन गए। कहने का मतलब बाबा वो चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो, आदर्श हो, अनुकरणीय हो सबके सामने, कि कहें कि बनना है तो ऐसा। सचमुच इनको कौन बनाया? हमारे जैसे दुनिया में देखना, बहुत एक छोटा सा बच्चा, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर बोलता है, बहुत सुंदर, तो कहते इसके माँ बाप कौन है, कौन है इनके माँ बाप, कौन है? लोग बच्चा को देख के उसके माँ बाप को ढूंढते हैं, कौन है इनको बनाने वाला। ऐसे ही बाबा कहते तुम ऐसा बनो जो भगवान का परिचय लोगों को स्वतः मिल जाए। इनको बनाने वाला कौन है, किसने बनाया इनको, तो बाबा अभी वो चाहते हैं। तो रूहानियत हमारे जीवन में आया और हम सभी फरिश्ते बन गए तो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अंत समय है मेरे भाई और बहनों। अभी बाबा की शिक्षा को गहराई से, हमारी जानकी दादी जी कहती थी कि मैं 6 महीना पहले शुरू शुरू में जब भट्टी बनी तो दादी जानकी जी हमारे 6 महीना बाद आई तो बाबा के सामने जाके इतनी रोई कि बोली कि बाबा मैं 6 महीना लेट हो गई, मैं सबसे पीछे हो गई, 6 महीना लेट हो गई। तो बाबा ने कहा कोई बात बच्ची, कोई बात नहीं, तू मुरली 8 बार पढ़, देखना तू सबसे आगे निकल जाएगी। दादी कहती थी मैं 16 बार पढ़ती थी। आपको वंडर लगेगा, हमारी दादियां स्कूल कॉलेज में भी नहीं गए होंगे। हमारी दादी जान की तो 3री की 4थी क्लास पढ़ी है, शायद स्कूल में भी नहीं गई होंगी। लेकिन हमारे जो मीडिया संभालते हैं, हमारे करुणा भाई जी अनुभव सुना रहे थे एक बार कि बेंगलोर में फर्स्ट टाइम दादी वहां थी, उस समय ये गए थे फर्स्ट टाइम, वो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जस्ट पास किए थे इंजीनियरिंग कॉलेज से और गए थे। तो दादी उस दिन बिना कोई हाथ में मुरली लिए 1 तारीख से 30 तारीख तक बाबा ने मुरली में क्या कहा था ओरली ऐसे बोलने नहीं, 1 तारीख को पहले बाबा ने ये बताया था, 2 तारीख ने बाबा ने ये कहा, 3 तारीख को बाबा ने ये कहा, पूरा महीना का पूरा मुरली एकदम सुना दी। ये तो स्टंट रह गए, बोले कि ये कौन सा कंप्यूटर है, ऐसा आज तक में नहीं सुना कोई हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसा प्रोफेसर कभी नहीं ऐसा। तो कहने का भावार्थ है कि ये पढ़ाई को हमें इतनी लगन से पढ़ना पड़ेगा। हम दुनिया में कोई कोर्स करते हैं तो वहां फीस भरते हैं तो कितना मेहनत करते हैं, तो ये भी खाली ऐसे चलते फिरते थोड़ा सा सुन लिया मोबाइल में थोड़ा सुन लिया नहीं चलेगा। अभी लास्ट समय है, बाबा क्या कहते हैं, बाबा के इशारों को समझते हुए प्रैक्टिकल जीवन में अगर उतारेंगे जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते ये पढ़ाई पढ़ के तुम भविष्य में राजा महाराजा बनो, यही मेरी सुविच्छा है तुम बच्चों प्रति। ठीक है, तो सिंपल बने सैंपल बने, बाबा यही चाहते हैं हमसे। थैंक यू। ओम शांति।